अभिमन्यु ने अपना सिर नीचे झुकाते हुए कहा, कैसे बताएं हम आपको ये बात इप्सिता, क्योंकि हमें डर था अगर हमने आपको ये बात बताई तो पता नहीं उस वक्त आप हमारी बात पर यकीन करती या नहीं, और अगर हम आपको ये बात बताते तो पता नहीं आप हमारे बारे में क्या सोचती, और शायद जब तक हम आपको ये बात बताते और समझाने की कोशिश करते तब तक शायद बहुत देर हो जाती, और हम ऐसी सिचुएशन में थे कि हम एक पल की भी देरी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर ज़रा भी टाइम वेस्ट होता तो शायद हम आपको हमेशा हमेशा के लिए खो देते, और हम ऐसा नहीं कर सकते थे। जैसे ही अभिमन्यु ने ये बात कही, इप्सिता उसे घूरते हुए देखकर बोली, हम यकीन करती या नहीं वो बात तो आपको हमें बताने के बाद सोचनी चाहिए थी ना। आपने तो पहले ही डिसाइड कर लिया था कि आप हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे, और आपने हमें वो बात बताई ही नहीं। रही बात हमें खोने की, तो आप हमें पहले ही खो चुके हैं। आप ये मत समझिएगा कि आप यहाँ पर आए हैं और अगर आप हमसे माफ़ी मांगेंगे तो हम आपको माफ़ कर देंगे। बिल्कुल भी नहीं, हमसे माफ़ी की उम्मीद मत करिएगा। हमने आपको प्रॉमिस किया था, सिर्फ इसीलिए हम यहाँ आए हैं, वरना हमारा यहाँ आपके पास आकर आपसे बात करने का कोई मूड नहीं था। अब बताइए आखिर बात क्या है। अभिमन्यु ने इप्सिता की ये बात सुनते ही कहा, क्या आप हमारी पूरी बात सुनने के बाद भी हमें माफ़ नहीं करेंगी। इप्सिता ने बिना किसी झिझक के तुरंत नहीं में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, आपने हमारे और हमारे परिवार के साथ जो किया है उसके बाद आप माफ़ी के लायक नहीं हैं। अभिमन्यु, इस बात को आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतना ही अच्छा होगा। इतना बोलकर वो दूसरी तरफ देखने लगी। इप्सिता अभिमन्यु से नज़रें नहीं मिला रही थी, क्योंकि उसे पता था कि अभिमन्यु की आँखें उसकी कमज़ोरी हैं, और अगर वो उसकी आँखों में देखेगी तो ज़रूर कमज़ोर पड़ जाएगी और आसानी से माफ़ कर देगी उसका मासूम चेहरा देखकर। और इस वक्त वो बस कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। अभिमन्यु ने इप्सिता के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, ठीक है, हम अपनी गलती मानते हैं और बेशक आप हमें माफ़ मत करिएगा, लेकिन कम से कम एक बार हमारी बात शांति से सुन लीजिए। इप्सिता ने अभिमन्यु के हाथ की तरफ देखा। जैसे ही अभिमन्यु ने अपना हाथ इप्सिता के हाथ पर रखा था, इप्सिता के दिल की धड़कनें काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई थीं, और वो अभिमन्यु की तरफ हैरानी से देखने लगी। उसने तुरंत अपना हाथ अभिमन्यु के हाथ के नीचे से निकाल लिया। अभिमन्यु इप्सिता का ऐसा करते देखकर थोड़ा सा एम्बेरेस्ड हुआ और उसने इस तरफ देखते हुए कहा, सबसे पहले तो हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि हमारी वजह से आप इतना हर्ट हुई। इप्सिता ने जैसे ही अभिमन्यु की ये बात सुनी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, हम हर्ट हुई वो बात की बात थी, और वैसे भी उस बात को बीते हुए 6 महीने बीत चुके हैं। हम बहुत अच्छी तरह से मूव ऑन हो चुकी हैं, और बेहतर होगा कि आप भी मूव ऑन हो जाइए, और जिस वजह से आपने शादी तोड़ी थी आप उसके साथ खुश रहिए। इप्सिता की बात सुनते ही अभिमन्यु की भौहें से कुड़ गईं और उसने हैरानी से पूछा, क्या मतलब है आपका। इप्सिता ने बिना किसी भाव के सीधे ही कहा, वही जो आपको समझ में आ रहा है, हम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आपने हमसे शादी क्यों नहीं की। वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल थी ये सब कुछ बोलते हुए, और उसे बुरा भी लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने ये बात अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। आखिर मॉडल होने का पूरा फ़ायदा उठा रही थी, और इस वक्त भी उसका मॉडल फेस ही वहाँ पर बना हुआ था। अभिमन्यु इप्सिता की तरफ हैरानी से देखते हुए बोला, क्या सच में आपको भी ये बात पता है। इप्सिता ने बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहा, बिल्कुल पता है, क्योंकि आपने खुद ही हमसे ये बात कही थी कि आप अभी तक अवंतिका से ओवर नहीं हो पाए हैं। आप आज भी उनसे प्यार करते हैं, तो हम जानते हैं आपने उनकी वजह से हमसे शादी नहीं की, और एक तरह से देखा जाए तो आपने बहुत अच्छा ही किया, क्योंकि अगर आप हमसे शादी कर भी लेते तो शायद हम दोनों में से कोई भी खुश न रहता। वैसे भी जब प्यार आप उनसे करते हैं तो हमसे शादी करना एक तरह से देखा जाए तो हम दोनों की ही ज़िंदगी ख़राब होने वाली थी, और अच्छा ही हुआ जो आप उस दिन शादी के मंडप में नहीं आए। कम से कम आज हम अपनी लाइफ में अपनी छोटी सी फैमिली के साथ खुश तो हैं। अभिमन्यु इप्सिता की आंखों में एक अलग ही दर्द महसूस कर पा रहा था। भले ही इप्सिता ये सारी बातें बोलते हुए मुस्कुरा रही थी, लेकिन अभिमन्यु बहुत अच्छी तरह से जानता था कि वो बेईमानी से मुस्कुरा रही है, और अभिमन्यु ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं इप्सिता, गलत समझ रही हैं। हम मानते हैं कि हमने आपसे ये बात खुद कही थी कि हम अवंतिका से प्यार करते थे, लेकिन अवंतिका का अब हमारी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। हमारे लिए अब अगर कोई मायने रखता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। इप्सिता ने अभिमन्यु की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, ओ रियली? हम अगर आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट होती तो उस दिन आप हमारे साथ ऐसा नहीं करते, और अब भले ही आप इस बात को चाहे जैसे बोलें, हमें आपकी बात पर यकीन नहीं होगा। और जब हम ये बात जानते हैं कि आप अवंतिका से प्यार करते हैं, तो फिर आपको इस तरह से हमारे आगे पीछे घूमकर हमें सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है। अभिमन्यु इप्सिता की बात सुनकर थोड़ा इरिटेट हो गया था, और उसने इप्सिता की तरफ देखते हुए अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, आप गलत समझ रही हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। हम अवंतिका से नहीं, बल्कि हम आपसे। अभिमन्यु बोल ही रहा था कि वो इतना बोलते बोलते अचानक से चुप हो गया और इप्सिता का दिल एकदम तेजी से धड़का, क्योंकि जो वो शायद सोच रही थी अभिमन्यु भी वही बोलने वाला था, और इसलिए वो अभी अभिमन्यु की तरफ बड़ी ही हैरानी से देखने लगी। उसने अभिमन्यु की ये आधी अधूरी बात सुनी और उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। अभिमन्यु ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, देखिए इप्सिता, हम जब उस दिन मंडप में आने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी उससे कुछ देर पहले ही हमें एक ऐसी बात पता चली थी जो सुनकर हम बिल्कुल ब्लैंक हो गए थे। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, और हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा था कि हम कुछ और कर पाते, इसीलिए हमने इतना बड़ा कदम उठाया, इप्सिता ने अभिमन्यु को बोलते हुए देखकर कहा। आखिर ऐसी भी कौन सी बात आपको पता चली थी जिसकी वजह से आपने सब कुछ किया, क्या हम ये बात जान सकते हैं? इप्सिता के मुंह से ये बात सुनकर अभिमन्यु ने तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाया, और वो अपनी बात बोलने जा ही रहा था कि तभी अभिमन्यु के पीछे से एक सख्त आवाज आई, इप्सिता, तुम यहां पर क्या कर रही हो? इप्सिता ने जैसे ही उस आवाज की तरफ अपना सिर उठाकर देखा, इप्सिता का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया और वो अपनी चेयर से उठकर खड़ी हो गई। इप्सिता को इस तरह डरते देखकर अभिमन्यु पीछे मुड़कर देखने लगा। सामने एक 6 फुट का हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था, जिसने 3-पीस सूट पहना हुआ था और उसके हाथ में महंगी घड़ी थी। वो दिखने में ही काफी रिच फैमिली का लग रहा था। अभिमन्यु भी उस आदमी को घूर कर देखने लगा। तभी इप्सिता उस आदमी के पास गई और उसने कहा, अथर्व सर, आप यहां क्या कर रहे हैं? अथर्व ने इप्सिता को सिर से लेकर पैर तक देखते हुए कहा, ये सवाल तो मैं भी तुमसे कर रहा हूं ना कि तुम यहां क्या कर रही हो, वो भी इस टाइम पर। इतना बोलकर वो अभिमन्यु की तरफ देखने लगा। अभिमन्यु उसकी ये बात सुनकर उठा और इप्सिता के बगल में आकर खड़ा हो गया। अथर्व ने देखा कि इप्सिता अभिमन्यु के साथ बड़ी अच्छी लग रही थी। वो दोनों एक साथ जब खड़े हुए तो बिल्कुल कपल वाइब दे रहे थे।
ये देखकर अथर्व काफी ज्यादा चिढ़ गया, क्योंकि जो सामने नजर आ रहा था वो बिल्कुल भी उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। वो इप्सिता को अभिमन्यु के साथ नहीं देख पा रहा था और उसे पता भी नहीं था कि आखिर उसके साथ खड़ा वो शख्स कौन है और वो इप्सिता का क्या लगता था। उसने इप्सिता की तरफ देखकर अपनी आंखों की पुतलियों को सिकोड़ते हुए कहा, एक सेकेंड इप्सिता, जहां तक मुझे याद आ रहा है, मुझे नंदिनी ने कहा था कि आज तुम स्टूडियो नहीं आओगे क्योंकि तुम्हारी तबीयत खराब है, लेकिन तुम तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रही हो। इप्सिता उसकी बात सुनकर बोली, हाँ सर, वो हम एक्चुअली। इप्सिता बोलते हुए सोच रही थी और बोलते वक्त उसकी जबान लड़खड़ाने लगी। तभी अथर्व ने अपने दोनों हाथ सामने की तरफ बांधते हुए कहा, तुमने मुझसे झूठ बोलने के लिए नंदिनी को बोला था या फिर तुम स्टूडियो न आने का बहाना बना रही थी, आखिर बात क्या है? इप्सिता ने अथर्व की बात सुनते ही तुरंत ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं सर, एक्चुअली हम कोई बहाना नहीं बना रहे थे और नंदिनी ने भी आपसे झूठ नहीं बोला। एक्चुअली सुबह सच में हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, हमारे सर में काफ़ी ज़्यादा हेडेक हो रहा था, हमसे आंख भी नहीं खोली जा रही थी, इसीलिए आज हम स्टूडियो नहीं आईं। इप्सिता की ये बात सुनकर अथर्व ने अभिमन्यु की तरफ घूरते हुए कहा, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम्हें इस टाइम भी घर से बाहर नहीं आना चाहिए था, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था, लेकिन तुम तो यहाँ पर किसी के साथ बहुत बिजी हो। अभिमन्यु ने जैसे ही अथर्व के मुँह से ये बात सुनी, उसने अथर्व के सामने आकर कहा, एक्सक्यूज मी, इप्सिता अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करती हैं और क्या नहीं, हमें नहीं लगता तुम्हें इस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए, और वैसे भी तुम इप्सिता के बॉस हो तो तुम्हें वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में क्यों बताएं? अभिमन्यु ने अथर्व की तरफ घूर कर देखते हुए ये बातें बोली। अथर्व ने अभिमन्यु को घूरते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए तुम भी मुझसे बात करने की कोशिश मत करो। एंड इप्सिता, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम यहाँ इसके साथ क्या कर रही हो और ये है कौन? इप्सिता अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बोली, वो एक्चुअली ये हमारे फ्रेंड हैं, कुछ दिनों के लिए मुंबई आए हैं, इसीलिए हम इनसे मिलने और कुछ बात करने के लिए आए थे। अथर्व ने उसकी बात सुनकर नाराजगी जताते हुए कहा, बात करने के लिए? हमने तो तुमसे कई बार कॉफ़ी के लिए पूछा, लेकिन तुमने तो मुझे हर बार बड़ी ही आसानी से मना कर दिया, और अब यहाँ अपने फ्रेंड के साथ आराम से यहाँ पर बैठी हो, क्या ऐसा करना ठीक है? इप्सिता अथर्व की बात सुनकर धीमी आवाज में बोली, आई एम सॉरी अथर्व सर, बट। इप्सिता बोल ही रही थी कि अभिमन्यु अथर्व की बात सुनकर उसे घूरते हुए बोला, वेट अ मिनट, तुम इप्सिता के साथ कॉफ़ी पीने के लिए क्यों बोल रहे थे? तुम तो उनके बॉस हो ना, तो फिर हमें नहीं लगता कोई भी बॉस अपनी किसी एम्प्लॉय के साथ कॉफ़ी पीने के लिए बोलता है।